शक है प्रश्न नंबर 311। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संबंधी प्रकरण चल रहा है, उसमें शिष्य का प्रश्न ये है कि यहाँ प्रश्न कि तुमने कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तब फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है, इसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे हो। ये समस्या है, द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरणादि आठ है ना, उनके उदय में भाव कर्म होता है। वास्तव में तो अकेले मोहिनी कर्म के उदय में भाव कर्म होता है, सात कर्म के उदय में भाव कर्म नहीं होते। फिर भी आठ ही कर्म कहते हैं, क्योंकि वो तो शिष्य को तो बड़ा चढ़ा के ही बात करनी है ना। सात कर्म तो हमेशा निसंतान ही मरते हैं, आप जानते हैं बात, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। किस अर्थ में नहीं होती है, जैसे आघात या कर्म है पुण्य पाप, उनके उदय में जो संयोग मिल गए बस उदय में आगे खिल जाएंगे, उन संयोगों के कारण कोई भी पुण्य पाप बंध नहीं होता। ये अपन बहुत विस्तार से चर्चा कर आए, क्या वो पुण्य पाप बंध का कारण ही नहीं है जो बाह्य परद्रव्य की क्रिया। अब अकेला जो मोहिनी कर्म है उसके उदय में जो होते हैं वो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होने वाले अज्ञान भी बंध का कारण नहीं है, दर्शनावरणी कर्म के उदय से होने वाला आदर्शन भी बंध का कारण नहीं है, अंतराय के उदय से होने वाले विघ्न भी बंध का कारण नहीं है। सिर्फ मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला दर्श मिथ्यात्व और राग द्वेष यही बंध में निमित्त बनते हैं। तो सात तो नपुंसक ही होके मर गए, उनके तो कोई संतानें होती ही नहीं है, उनकी तो परंपरा वहीं खत्म हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि फिर आप कहीं खत्म हो जाते हैं तो प्रश्न खड़ा हो रहा है आपके जेहन में, जवाहरलाल जी के जेहन में खड़ा हो रहा है कि फिर ये आए कहाँ से, तो उनकी वंश परंपरा खत्म ही हो गई है तो ये हमारे पास फिर आज होना नहीं चाहिए थे ना। लेकिन ये जो मोहिनी कर्म के मोहराग देश भाव है ना, इनसे जो कर्म बंध होता है ना, तो ये उनको बंटवारा दे के फिर पैदा कर देते, फिर नए पैदा हो जाते, फिर उसमें वही कर्म का उदय निमित्त नहीं होता, जबकि मोहिनी कर्म में ऐसा होता है। तो मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्यात्व भाव हुआ और कसाय भाव हुआ, उससे फिर मोहिनी कर्म और कसायत्म मोहिनी बनता है, और फिर वो उदय में आता है तो उससे फिर वही बनता है, और बाकी के जो साथ हैं उनको बंटवारा भी उनमें भी इससे ही होता है काम, समझे ना। मेरे ख्याल से बात स्पष्ट हो गई, ज़्यादा नहीं लंबाऊंगा मैं इसे। अब मुख्य मुद्दा तो ये है कि कुछ भी हो आखिर ये परंपरा चल तो रही है, हमने राग द्वेष का भाव किया और वहाँ कर्म बंधे, कर्म उदय में आए तो फिर हमने राग द्वेष का भाव किया। तो पहले मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर ये लड़ाई कभी खत्म तो करनी पड़ेगी ना, तो कौन खत्म करेगा इसे, कर्म करेंगे कि अपन करेंगे। मन कर्म के उदय में बंध नियम से होता और राग द्वेष हो तो कर्म नियम से बंधेगा। एक उपाय तो ये है कि हम राग द्वेष करते रहें और फिर कर्म इनकार कर दे कि मैं नहीं बनता, तो झगड़ा खत्म हो सकता है। तो एक बात यह है कि कर्म उदय में आया करे और हम इनकार कर दें कि हम राग द्वेष नहीं करते, तो झगड़ा बंद हो सकता है। लेकिन अनादि से आज तक दोनों में से एक ने भी अपनी मूछ का ताव नीचे को नहीं किया, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने लड़ाई बंद करी तो मैं हार जाऊंगा। कर्म कहता है मेरे बाप का तो कुछ बिगड़ता नहीं, मत कर, आखिर तकलीफ में तो तू ही है, और जिन जिन जीवों की ये झगड़ा खत्म हुआ है उन सब ने आत्माओं ने हार मानी है। कर्म का उदय वे और विराग दे, ऐसा हो सकता है कि मोहिनी कर्म का उदय रहे और राग देश नहीं करे? तो ही तो बता कि ऐसा होता नहीं है, क्या हो सकता है? थोड़ा चांस है, जनरल नियम तो नहीं कह सकते हैं। कैसा कि हमेशा मोह राग देश कर्म का उदय हो और मोह राग देश ना हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन मौका मिलता है, चांस मिलता है, वो ये उसका बिंदु है जहाँ वो अंत में कहने वाले हैं ना, देखो अवसर चूकना योग्य नहीं। पेज नंबर फिर आप निकालो, फिर आप बोल्ड अक्षरों में है ना, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये अवसर है जो चूकना योग्य नहीं है वो मिलता है, कहाँ मिलता है अब उसकी चर्चा बन रही डेढ़ पेज में आज करनी है। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ खत्म करूंगा। अवसर चूकना योग्य नहीं है, आज का सब्जेक्ट ये है। तो अवसर है कहाँ जो चूकना योग्य नहीं है, क्या है ना? चलो अब पढ़ते हैं। कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है, तब तो अवसर नहीं मिलेगा। तब तो ऐसा ही है माने तब तो मौका नहीं मिलेगा। कर्म का उदय हमेशा एक सा हो तब तो फिर अवसर नहीं है, तब तो फिर तुम कह रहे ऐसा ही होगा, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, बनी रहो। परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म में भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। मुद्दे की बात यह है कि ये हमेशा एक सा नहीं होता, मंद तीव्र होता है। अब क्यों होता है? तो उनने कहा वो कर्मों की है ना शक्ति ही ना देख होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, बहुत बहुत क्रियाओं से गुजरता है, तो उसमें ये चांस मिल जाता है। कभी मंद उदय होता है, कभी तीव्र उदय होता है, यानी ये बहुत विचित्र बात है। देखो अपन से अपन समझते ना, दो बातें समझ लेना बहुत मर्म की। एक हम समझते हैं कि हमें कसाय कभी कभी होती है, ये बहुत धोखे में है। आप 23 कसाएं एक केंद्रीय को भी 24 घंटे रहती है और हमें 25, उन्हें 23 क्यों रहती है? क्योंकि वे स्त्री लिंग और पुलिंग दो नहीं होते, रुपन से कहीं होते हैं, इसलिए बाकी की 23 कसाएं दो को छोड़कर उन्हें 24 घंटे। मनुष्य गति में तीनों ही होते हैं, मनुष्य कभी मंद होती कभी तीव्र होती। तो जब मंद होती तो हम समझते हैं कसाय अभी नहीं है, अभी तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा ना। लेकिन शास्त्र वालों से पूछा तो अनंतान मंदी प्रत्याखान अप्रत्याखान और सुंदर सब उदय में है। क्यों? तो देश अरोचक भाव राज श्रीमद ने लिखा, जो हमारे लिए तत्वी अरुचि पड़ी है वो अनंतान मंदी क्रोध है। ऐसे ऐसे है बहुत, सब विद्यमान है। हमको तो जब महातीव्र होती है तब मालूम पड़ता कि है कसाएं। अब इनका भी एक नियम है, एक तो एक हमेशा है, दूसरा ये है कि हमेशा सदा एक सी नहीं रहती, मंद तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र। नियम से ऐसा है कि कोई कसाय अंतर्मुख से ज्यादा तीव्र अंतर्मुख से ज्यादा मंद नहीं रहती, तो गारंटी से बदलेगा ही, बदलेगी इसके स्वरूप में ही पड़ी है और तदनुसार उसका निमित्त भी होगा। निमित्त माने वो उस कर्म का उदय, क्योंकि वो भी ऐसा बदलता रहता है, तब तो कसाय भी बदलती रहती है। तो इसमें जो मंद का काल आता है वो आपको अवसर है। क्या जो वो कहते ना, क्या अवसर चूकना योग्य नहीं है? देखो उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है, इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानाधिक बहुत प्रकट होते हैं और कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है बिना कुछ किए। माने किए माने क्या, जब तक अज्ञान ही है तो उनका कर्ता तो आदेशा कर्ता जी आत्मा कहलाता ही है। माने वो बुद्धि पूर्वक सोच समझ के उसने कुछ नहीं किया, ऐसा है। देखो भाई एक बात तो नक्की कर ही लो, असैनी पंचनी रहे तो कोई सोचने समझने का काम ही नहीं है। और निगमत से लेकर हम सैनी पंचेंद्री होने तक की जो यात्रा हमने की है वो तो सब बिना सोचे ही समझे भाई है ना। इतना तो नक्की है कि नहीं। वो जो उसकी प्राकृतिक मंदता और तीव्रता होती रहती है, जो तुम बुद्धिपूर्वक जिसमें तुम कुछ नहीं करते हो, अकल ने तुमने बिल्कुल नहीं लगाई जिसमें, है नित्य वो तुम्हारी थे कड़कर नर पर्याय पाए सुख दानी। क्यों, एक इंद्रगोप के कीड़ा हुए और वहां से जाकर सीधे चक्रवर्ती के बेटे हो गए, तो चक्रवर्ती के बेटे होने लायक पुनः तो इंद्रगोप कीड़ा ने कमाया या निगोद में कमाया था। बोलो, और तुम मनुष्य पर्याय पा के अभी पुण्य कमाना चाहते हो ने? जो काम दो इंद्री ने कीड़े मकोड़ों ने कर लिया था, ये पुरुषार्थ के मनुष्य चक्रवर्ती के बेटे पैदा हो जाए ऐसा पुण्य बांधा कहाँ था उनने? क्योंकि बेटे सीधे दो इंद्री से हुए थे और निगो से निकल कर सीधे दो इंद्री हुए थे, और थोड़ा काल रहे हाथी के पैर के भय चक्रवर्ती के नीचे आके मरे और चक्रवर्ती के बेटे हो। कौन सी पुण्य क्रिया की थी उन्होंने, कौन सा पुण्य भाव किया था? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाला पुण्य था वो, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं किया था और ऐसा वो वस्तु के स्वरूप में ही पड़ा है। अब एक एक दिन की अलग अलग पर्याय के योग्यता के कारण अलग अलग भी पड़ा है और सब में भी ऐसा होता रहता है कि कॉमन भी है उसमें कुछ चीजें और कुछ विशिष्ट भी है, कुछ स्पेशलिटी भी है और कुछ कॉमन भी है। क्यों स्पेशलिटी नहीं होती तो देवीदीप क्यों ऐसे द्वेंद्री हो गए कि चक्रवर्ती के बेटे हो गए मुख चले गए, बाकी सब क्यों नहीं चले गए? और कॉमन टी नहीं होती तो कोई सब्जी में से कोई भी कभी निगोद से निकलता ही नहीं था। कहने का मतलब एक वो अवसर चूकना योग्य नहीं है, वहां तक पहुंचना है ना, तो अवसर कहाँ है? और अवसर का उसे बोलते हैं कि जिसमें तूने कुछ नहीं किया हो और तेरे को मौका मिला हो। जैसे अपन कहते हैं जिंदगी में चांस बार बार नहीं मिलती, ऐसा होता ना एक जगह कोई आपसे आए गालो जी आप ऐसा करो, मैं बहुत बड़ा उद्योग डाल रहा हूँ, 1,00,000 रुपया रोजाना की कमाई होगी, आपको होना हो पार्टनर हो जाओ मेरे उसमें। कहने नहीं मुझे नहीं कहना, अरे मौका मत चुको, ऐसे ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते हैं। क्यों काय का चमड़े का कारखाना डालूंगा, लोग तो इसके लिए भी कहते हैं कि ऐसे मौका बार बार नहीं मिलते हैं। क्यों देखो बहुत बढ़िया काम हुआ, सबसे खोटा काम क्यों है? ये कहते हैं ऐसे मोक्ष के मार्ग का भी मौके ऐसे आपके जीवन में आते रहते हैं। वो अब तुमको उस मौके को पकड़ने का तुम्हारा काम है। तुमने ना क्या कह दो क्या मौका पकड़ना है अपन को? अब वहां कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त की। अब मन ऐसे ही में मौका पाते पाते हम सैनी पंचेंद्री हो गए, उसने तुम्हें कुछ नहीं किया था है ना, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। अब ये क्षयोपशम लब्धि का काम शुरू हुआ। अब तथा इसके तीव्र रागादिक होते थे, कभी मंद होते हैं, वहां रागादिक तीव्र उदय होने से विषय कदा कसायादिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है। जब तीव्र होंगे तब तो विषय कसाई के कारणों में प्रवृत्ति रहेगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता, वहां माथा मत मानना। तथा रागादिक मंद उदय होने से और बाह्य ऐसे में बाह्य का उपदेश का निमित्त बने है ना, तब स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादि में उपयोग लगाए और धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो, तो ये मौका है। आप सुनिए ना क्या कह रहे, यदि अभी आपको तीव्र कसाय जग रही हो कोई और ऐसे में उपदेश का निमित्त मिले है ना, और वो ये कहेगा भाई क्या खाने पीने में मस्त हो, पैसा कमाने में मस्त हो, अरे आत्मा को समझो। हाँ हाँ, निथल्ले लोगों को और क्या है, कुछ काम धाम तो है नहीं, बैठे गप्पे लगाते हैं, यहाँ तो 8 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, 2 रोटियाँ मिलती है, ऐसा है जो गुस्सा है, बस कह दिया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, क्या लगता है जवान हिलाने में, गद्दी पे बैठ गए ठोकते ही, वही उपदेश सुन के ऐसा भावा तीव्र कसाय हो तो। यदि यहां मंद कसाय हो पर वहां उपदेश का निमित्त बने, तो उस वक्त उसका अपना विचार उसमें लग जाए तो काम हो जाए। तो ये मनुष्य गति में ऐसे मौके आपको आते रहते हैं, और आपको तो आते ही रहते हैं, और उसका प्रमाण यह है कि अभी यही मौका है, क्योंकि वो छोर सुन की शक्ति भी है, कसाय मंद भी है, 5 विषयों की प्रवृत्ति भी नहीं हो रही है, और जो विषय बात सामने आ रही तो मेंढक की भांति आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख के सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अवसर है जो चूकना योग्य नहीं है। क्या उसने देव कर्म भाव कर्म का मौका बताया था ना, उसने कहा भाई बात तो वैसे ही है, वैसे ही होगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी चांस नहीं हो ऐसा नहीं है। अपन कहते हैं ना, हर एक आदमी के भाग्य में जिंदगी में 2-4 मौके तो उसे मिलते हैं, और जो मौकों को पकड़ ले तो पकड़ ले, और नहीं तो रखना तो है जिंदगी में। व्यापार अधिक में अपन ऐसी बातें करते क्या नहीं करते हैं? और उपदेश और निमित्त ना बने, और स्वयं भी पुरुषार्थ ना करे तो अन्य कार्यों में प्रवर्ते, परंतु मंद रागादा सहित प्रवर्ते, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। अब क्या तुम असली मुद्दा कौन सा था कि तुम हमें उपदेश क्यों देते हो, वहीं से बात शुरू हुई थी कि तुम उपदेश हम क्यों शुरू होता, अपन ने 8 तारीख को कहां से शुरू किया था कि तुम हमें उपदेश क्यों देते हो, बहुत उपदेश देते हो, तुम्हारी आदत खराब हो गई, तुम्हें तो व्यसन हो गया उपदेश देने का, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती हम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो वो ये कहते हैं क्या कहते सुनो कि वो कसाय तो वो मंद हुई, ज्ञान का छोर सुन है, तुम सुनने आ गए और फिर उपदेश का निमित्त बना, और तुमने उपदेश सुना तो काम हो जाएगा, और उस वक्त यदि तुम उपदेश पे ध्यान नहीं दो तो क्या होगा कि वो समय खड़ा तो रहेगा नहीं, वो तो आप बहुत लिमिटेड समय है आपको मिला है, जो फिर वो अंदर से जो अपनी प्रकृति से कर्म का उदय तीव्र हो जाएगा, तो कसाई भी तीव्र हो जाएगी, वो गारंटी से होने वाली है, और वो मौका निकल जाएगा हाथ से। वो कहते हैं वो तुम आलस कर रहे हो, बस उस बिंदु पर हम उपदेश देते हैं कि बेटा पकड़ ले मौका है, खत्म से समझिए ना, लेकिन लिखा ना कि समय बेकार चला जाए, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है, और बाकी का तो बाकी उपदेश बेकार जाने ही जाना है। देखो एक लड़की झूले पे ऐसी झूल रही है, तो यहां इतनी ऊंची जाती है, यहां इतनी ऊंची जाती है, समझे ना, और अपन को झूले वो घबरा रही है, रो रही है, अब अपन को उस लड़की को उसमें से उतारना है, तो अपन यहां खड़े हैं जहां वो जब ऐसी झूलती है बहुत तेजी से आती है ना, एक सेकंड ऐसा आता है कि जब वो तुम्हारे इनको ऐसे हाथों के पास से निकलती है, क्यों, और वो भी उस पर से उतरना चाहती है, और आप भी उतारना चाहते हैं, और दोनों सावधान रहे, और वो उधर आए और आप साफ पकड़ के वो आप में आजाद होता जा नहीं, वो आपसे चूक गया, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर आए, फिर इसे ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, लेकिन हर दफे वो मौका आएगा, और अब तुम चूक गया मौका, तो उपदेश अहम देते, अब की बार में चूकना बेटा, अब की जब आए तो तू ले लेना, अब की आए तो ले लेना, अब की आए तो ले लेना, ऐसे मौके पर उपदेश कार्यकारी है। उसने कहा तुम उपदेश क्यों देते हो, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, देव क्रम से भाव क्रम, भाव क्रम से देव क्रम का चक्कर चलता रहेगा, कि बेटा चक्कर में से निकलने का भी एक चक्कर है, ऐसा मौका आएगा, हम उस मौके को पकड़ने के लिए तेरे को उपदेश देते हैं। कितना गहरा चिंतन टोडा मुझे ने निकाला। वीरेंद्र जी, अपन लोग होते तो क्या करते टोडा मुझे की जगह? नाराज मत हो ना, मैं भी अपने को शामिल कर रहा हूं उसमें। बस कर्म भ्रम नहीं होता है। क्या कर्म भ्रम? कर्म कोई चीज ही नहीं है, आत्मा को कर्म ने छुआ ही नहीं है। क्या कर्म भ्रम का उदय फुदय? तू तो भिड़ा बेटा तो काम थे ही जैसे बात तो ऐसी ही है। तुम ठीक ही कहते हो, द्रव कर्म से भाव कर्म होता ही है, भाव कर्म से द्रव कर्म होता ही है, लेकिन उसमें एक मौका ऐसा आता है, आप समझे, बैलेंस। वो कर्म की सत्ता से इनकार नहीं, निमित्त की उपस्थिति से इनकार नहीं, और वो मौका भी तिरस्कार नहीं। वो कर्म का अपने में काम और तेरा काम बीच में हो सकता है, ये विशेषता है, समझे ना। ये जो मैंने मेरे और वीरेंद्र जी के नाम पर कही है, यदि कोई और की मेरे से भी ऐसी गलती होती हो तो सुधार लेंगे। क्यों? देखो आगे पढ़ते हैं आप, कहा है पेज में पलट गया मेरा कुछ। हाँ, अब विचार शक्ति सहित, अब जो विचार शक्ति रहित और जो एक इंद्रिया देखें, अब उनको उपदेश कार्यकारी नहीं है तो हम उन्हें उपदेश देते भी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा मौका नहीं मिलता कभी। जो एक इंद्रिया, जो विचार शक्ति रहित, जो एक इंद्रिया देखें हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र रागादे से जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। दो अलग अलग हैं, एक वो ज्ञान से हीन सूक्ष्म लब्धि से रहित, और दूसरे विशुद्धि लब्धि से रहित तीव्र कसाय वाले, वे उन्हें उपदेश समझ में नहीं आता है, और ये समझने ते नहीं है, ये उपयोग ही नहीं लगाते हैं आत्मा के समझने में, ये तीव्र कसाय वाले। कि तीव्र कसाय वाले जानते आप कौन लोग हैं? एकदम खूब गालियां बकते हो वे नहीं। इसका सीधी परिभाषा ये है कि आत्मा में उपयोग नहीं लगाते हैं और दूसरी जगह उपयोग लगाए रहते हैं, वे सब तीव्र कसाय वाले हैं। धंधे में लगाए रहते हैं, मंद कसाय वाले हैं। क्यों? समझे ना, वो मंदता और तीव्रता का नाप कोई चिल्लाहट नहीं है, क्योंकि वो तीव्र लोभ में लगे धंधे वाले, वे चिल्लाते तो तीव्र क्रोध वाले हैं, तीव्र लोभ वाले क्या चिल्लाते हैं, वे तो हाथ जोड़ते हैं। तीव्र माया वाले तो बड़े मिठबोला होते हैं, तीव्र मान वाले तो मतलब एकांत में आकर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्रयोजन हो रहा है, क्यों नहीं गए? हमसे किसने कहा, हमें किसने बुलाया? हमारे पास तो कार्ड भी नहीं आया, कार्ड तो भेजे थे, फोन तक नहीं आया। हम तो कार्ड से आए हुए लोगों में है, हमारी बेटी की शादी है, जो तुम कार्ड से आओगे, आओ तो अच्छे थे, नहीं आओ तो अपने घर लाओ, हमारा क्या है? जो सुबुदमान माया लोक की प्रवृत्ति वाले जो जीव हैं, सब तुम्हें तीव्र कसाय वाले नहीं दिखेंगे, लेकिन हैं वे सब तीव्र कसाय वाले। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वो कसाय के विकल्प में ही अटके हैं। चलो ना, चलो ना, प्रश्न करो, चलो ना। तो एक आदमी से जरा मीटिंग थी, वो आने वाला है, वो आजकल मीटिंग कहलाती है, ग्राहक पहले ग्राहक कहता है, कोई ग्राहक आने वाला है। मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूँ, जब आप लोग कहते हैं कि जरा मेरी मीटिंग है साहब, जरा इसी में जाना है, तो मैं समझता हूँ कि वही ऐसे 10,000-2,000 आदमी होंगे, और इनका कोई होंगी भाषण होगा, और हम तो ऐसे लोगों को ऐसी कोई मीटिंग समझते हैं। फिर मुझे तो पता चला कि दो आदमी एक जगह कोने में खड़े खड़े बात करते हैं, इसको मीटिंग कहते हैं। कि तुम अभी अभी साल से महीने नहीं समझ में आई। मैं क्या, तुम लोगों की इतनी मीटिंग होती है? हम तो दिन में एक दो मीटिंग करते हैं, उसमें ही हमारा पसीना निकल जाता है, तो तुम कितनी मीटिंग करते हो? क्यों, इनकी दिन में मीटिंग ही चलती रहती है। एक सीधी को ना ग्राह की है, किसी को पटा रहे थे, किसी को बुद्धू बना रहे थे, क्यों ये सीधी कहो ना, वो तीव्र कसाय का कार्य कर रहे थे, सीधी सच्ची बात है ना, ये टोडोमल जी के शब्दों में। अकेले धंधे ही पानी की नहीं है, और सब बातों की समझ देना, एक अपने अपने हिसाब से सब वो सब जो मीटिंग है सब तीव्र कसाय के कार्य हैं, और उसकी एक ही परिभाषा है कि उस वक्त आप आत्मा के हित का काम नहीं कर रहे थे, बस तीव्र कसाई की परिभाषा ये है। साजन समझ में आएगी नहीं? अब उसको मत गिनाओ कि हमने क्या किया क्या किया, कुछ नहीं, जो ये नहीं किया ना बस वो तीव्र कसाई होगी। ये जो मैं आपसे बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ, पर ये कोई मतलब तुमको किसी को टोंट मोंट करने के लिए तुमसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल जैन तत्व ज्ञान है, सर्वज्ञ की वाणी है। हंसी में टालने जैसी बात नहीं है, वो सब तीव्र कसाय में है। वो किस विकल्प से आप उलझे रहे हो इसकी कोई कीमत नहीं। ये तो मैंने गांधी जी की आत्मकथा से सीखा था, जब मैं करीब 14-15 वर्ष का था, तब मैंने जीवन की गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी। तो उसमें एक था कि जब 6वीं क्लास में पढ़ते थे गांधी जी, तो एक दिन के पिताजी की तबीयत खराब थी, तो पिताजी ने कहा बेटा जरा पैर पूछ देना, पैर दबा देते हैं, हाथ पैर दबाते हैं पैर, तो पैर दबाने लगे, स्कूल नहीं जा पाए। दूसरे दिन स्कूल में गए तो मास्टर ने ब्रेंच पे खड़ा कर दिया। फिर कहा मेरी गलती क्या है, पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं उनकी सेवा करने में लग गया, इसलिए नहीं आया, कि चुपचाप खड़े रहे, तो खड़े हो गए। अब क्लास की हो गई छुट्टी, अब इन्हें इतना गुस्सा आया कि ब्रेंच पे से खड़े हटे ही नहीं। तो मास्टर ने कहा बाहर निकलो, मैं ताला लगाना है कमरे का। नहीं, हमने तो नहीं खड़ा, आपने खड़ा किया, क्यों? आप मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? बाप की सेवा करना गलती है, जिसकी सजा आपने मेरे को दी है। अपने माँ बाप की सेवा करना गलती है क्या? तो उन्होंने कहा बेटा माँ बाप की सेवा करना गलती नहीं है, क्लास में अनुपस्थित रहना गलती है, और ये सजा तुम्हें कल क्लास में अनुपस्थित रहने की दी गई है, पिताजी के पैर दबाने की नहीं। नहीं, मैं तो पैर दबा रहा था, मैंने बताया था ना आपको। उसको बोलते हैं मराठी में क्या बोलते हैं ना, कि मैं तुमको क्या दूंगा, हाँ शिक्षा दूंगा, शिक्षा दंड देने को बोलते हैं शिक्षा देना। बेंच पे खड़ा कर दिया तो मैंने शिक्षा दी तुम्हें। तो गांधी जी ने कहा कि भैया ये तो शिक्षा है, शिक्षा माने क्या? दंड तो अलग होता है, दंड तो तुम्हें कल ही मिल गया और आज ये शिक्षा दी जा रही है, समझा? शिक्षा क्यों कहते हो? दंड कल मिल गया माने जो पाठ कल पढ़ाया गया था वो तुम्हें पढ़ने को नहीं मिला, और अब इस जीवन में कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये था दंड। तुम अगली साल 6वीं क्लास में रहे ना बेटा, फिर इसी दिन जब ये प्रकरण आएगा, जब ये पाठ में पढ़ाऊंगा तब पढ़ना, और तुम रहने वाले नहीं हो, 7वीं में चले जाओगे, तो ये पाठ तुम्हें कभी पढ़ने को जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो ये है दंड, और ये शिक्षा है कि तुम सीख लो कैसे दंड ना भोगना पड़े, कल से आज का तो भोग लिया, ये शिक्षा है। तो गांधी जी ने उस आत्मकथा में लिखा था कि उस दिन मेरे को ये समझ में आया, एक कर्तव्य के बहाने दूसरे कर्तव्य से प्रमुख हो जाना ये अपराध है, ये कोई बढ़िया काम नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस वक्त सिनेमा में गए थे, बाप की पैर दबा रहे थे, स्कूल में अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थिति दंड के कारण है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यहां आप अनुपस्थित थे, जो तत्व ज्ञान बताया गया था वो काल आपने नहीं सुना, दंड आपको मिल गया। दुनिया की कोई ताकत उस दंड से आपको वंचित नहीं कर सकती है। अब जो आज कह रहे हैं वो तो शिक्षा है। अब आप क्या काम करने गए थे, कितना बढ़िया काम करने गए थे, आपने क्या राजमहल खड़ा कर दिया, और उस वक्त मैं पूरी वैशाली बस जाएगी कि नहीं बसेगी, उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे ये सजा आपको मिलेगी, मिल गई, मिलेगी, और कहीं कोई इसकी माफी की गुंजाइश नहीं है, कहीं सिफारिश नहीं हो सकती है इसकी, समझे ना। ये तत्व ज्ञान है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये कोई बात यहाँ वहाँ की बात नहीं है। तो क्या बात करते हैं, अवसर चला जाएगा, क्योंकि तो अवसर तो बहुत कम आते हैं ना, अवसर चूकना योग्य नहीं है। देखो, एक इंद्रियाधिक के तो धर्म का ऊपर कहां से था, इस समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र आगाधिक होने से उपयोग लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो, सुनो अब, और जिनके रागाधिक मंद हों, वैसे हम लोग हैं, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ भी कार्यकारी है। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ उद्यम। इस वक्त तुम में है वो ताकत कि तुम आत्मा का हित कर सकते हो, इस वक्त कोशिश करो, काम हो जाएगा। आगे पीछे करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम नहीं है, उस वक्त तो वो शक्ति नहीं है तुम में, है ना। एक इंद्रियाधिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, उनसे क्या कहें। ये धर्म कार्य लिखा ना, धर्म कार्य माने पूजा पाठ वृत्ति संयम नहीं है, धर्म कार्य माने तत्व करने का निर्णय। एक इंद्रियाधिक धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है तो कैसे पुरुषार्थ करें। और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करें तो पाप का ही करें, धर्म कार्य में पुरुषार्थ हो नहीं सकता। कभी कभी पंडित जी, तो पंडित जी मुझे माफी मांग दो, पंडित जी देख कर देखो माफी दो, पंडित जी क्या कह रहे हैं मानो आपको, कि तीव्र कसाई तो पाप का ही पुरुषार्थ करें। और तीव्र कसाई कौन, जो आत्मा के समझने में जिनने उपयोग नहीं लगाया वे, तब जब नहीं लगाया तब वे काय का पुरुषार्थ करें। तो जो भी आपने किया हो वो सब पाप का पुरुषार्थ है, उस खाते में डालना। धर्म कार्य नहीं है, पुण्य कार्य नहीं है, वो पाप कार्य है। इस टोरे में जी लिख रहे हैं, बहुत कठोर बात है। अब तुम कुछ भी करो, वे तो 250 वर्ष पहले चले गए, उनका तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, टूर्नामेंट जी के विरुद्ध तो कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हों, जिनके रागाधिक मंद हों, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशाधिक के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और उसका भला हो। इस यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गमाए, या मंद राग आदि सहित विषय कार्यों में प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। अब कहां गुंजाइश है, बोलो सुनिए, कितने सब गिना दिए, क्या गिना दिए, क्या करेगा। वो उस वक्त तत्व निर्णय में उपयोग लगाता तो निर्णय हो जाता, अब वो वहां ना लगाए, और कहां कहां लगाए तो गलती है। देखो वो कौन कौन सी जगह, प्रमाद से काल गमाए, ये तो आराम से अपने घर पर लेट आ रहे, मंद रागादि सहित विषय काल आदि कार्यों में प्रवे, थोड़ी मूंगफली चना उठा उठा के मुंह में डालता रहे, खाता रहे, पीता रहे, कोई टीवी चला दे रहे, फिर चलता रहे, कुछ थोड़ा ये मंद कसाए के कार्य में प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में लग जाए, या जय जयनाथ परम गुरु में लग जाए, जो सबको एक साथ रख रहे। सर जो आपका प्रश्न हो तो मैं तो पूजा कर रहा था, मन लग गया। सर प्रमाद से काल गमाए, चाहे वो मन कसाय रूप विषय कसाय में प्रवर्त है, तो जब धर्म कार्यों में लगा रहे, अब सब तो चला जाएगा और संसार में भ्रमण करेगा। देखो व्यवहार के धर्म कार्यों को उसी श्रेणी में लिया है, मैंने नहीं, देखो अभी एक एक को खोल कर देखो, सब समझ लेना क्या है। कोई कोई माफी नहीं है, तीनों को एक ही कर गए, हमारे यहां से गए। हमारे यहां से कहावत है कि बेड़े गई तो गई, हारे गई तो गई, हमारे यहां से तो गई, जो गाय गाय है ना चली गई, तो जंगल में चली गई कि बेड़ में गई कि मर गई, तो हमारी तो गई उसके भाई, हम तो एक में जानते कि हमारे पास है कि गई है। पर तुमने धर्म का तत्व का निर्णय किया कि नहीं किया, इतना जानते हैं। तुमने क्या किया, कहाँ मरे, हमें उसके लेना देना नहीं किया। राम मैं तो इतना बढ़िया काम कर रहा था, फलाना बढ़िया काम कर रहा था, मैं कुछ नहीं सुनना। मैं कौन होता हूँ सुनने वाला, मैं कौन होता हूँ नहीं सुनने वाला, मौका तो चला गया ना। व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति देखा कि नहीं देखा, बोलो। तो अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। हम तो ये धर्म कार्य में लग रहे थे, ये भी तो धर्म है, ये भी तो किसी का कर्तव्य है, ये भी तो ड्यूटी है, अगर देश भी तो है, देश भी तो चलाना है, समाज भी तो चलाना है, इसकी भी तो ये करना है, वो भी तो करना है। देखो शिविर में लोग आते हैं 10 दिन का निकाल करके, इसमें से काट के 2 दिन भूत भगाने परंपरा चले जाते हैं, 1 दिन महाविधि चले जाते हैं। सुबह प्रथम में नहीं देखे गया, 2 दिन बाद जाते ना, इसमें से काय को काटा, धंधे में से काटते ना, ये वही है व्यवहार धर्म कार्य में प्रवर्तन करना। मुझे तो, मैं आपको सही घटना बता रहा हूँ, मैं देवलाली में था प्रशिक्षण शिविर के टाइम पे, तो वहाँ बहुत बहुत प्रेरणा देने पर कोई आदमी आए थे जिंदगी में समय निकाल करके, और उनके साथ एक पुराने भी आए थे, 10-15 दफे पहले आ गए थे, बाद में आए थे। तो आए 2 दिन प्रवचन सुना, और तो 3रे दिन टैक्सी मैक्सी कर करा करके तैयारी तो जाने की तैयारी। हाँ अरे मांगी तुंगी जाने की, कहाँ मांगी तुंगी, कहाँ साईं बाबा का मंदिर देखें, कौन शिरडी, शिरडी के साईं बाबा, शिरडी असन भाई, सच्ची घटना है। तो भाई आगे कहाँ जा रहे हैं, हम शिरडी के साईं बाबा जा रहे हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर, बिल्कुल देश में वे गए थे, वे तो आते हैं तो वे तो हर साल जाते हैं, उन्होंने आके उन्हें टैक्सी करी तो उन्हें हमारे भी कर ली साथ में, 8 सवारी एक साथ हो गई, कमीशन भी अच्छा मिल गया। मुझे कितना गुस्सा आया कि सारी जिंदगी में मुझे एक आध क्षण और याद हो कि जब मुझे उतना गुस्सा आया होगा। अभी समझ लो बस मेरी माँ बहन की गालियाँ ही मेरे से नहीं निकली, बस बस बाकी तो इतने कोई ज्यादा दूर के लोग नहीं थे, उन्हें सुनाई और जाके पूरा प्रवचन खराब हो गया, और प्रवचन में सुनाई थे पूरे, वो टेप होगा, कैसेट बना होगा, सिंधी के साईं बाबा वाला कैसेट। फिर भी बेचारा जो नया रंगरूट था वो तो रुक गया, लेकिन पुराना जो था वो नहीं रुका, वो गया ही। अब वो गुस्सा मेरे अभी भी ज्ञान का गेय बन गया। मेरा उसमें क्या स्वार्थ था, वो कहीं भी घूमे कहीं भी जाए, अब मेरा मतलब समझ, सचमुच मुझे हृदय में बहुत पीड़ा हुई कि कितने मुश्किल से ये अवसर मिलता है, ये तत्व ज्ञान ये तो गुरुदेव के प्रसाद से इस पंचम काल में हम जैसे अभागों के भाग्य में आ गया है, ये वातावरण बन गया है, इसके कितने कम अवसर हैं और इसको हम कितनी निर्दयता से बर्बाद करते हैं, ये आप कल्पना कर करके तो मुझे बहुत, मैं आंदोलित हो जाता हूँ, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या करना, तो बहुत दुख भी होता है, पता था क्या करना था, जिंदगी में पहले मिले नहीं कहते तो क्या फर्क पड़ता था, हम मुफ्त नहीं, ये अगले भक्तों की बैर बांध लेगा तो अगले भक्त में सुखाना पड़ेगा, अपन तो नहीं बांधने के लिए, वो तो बांध ही सकता है ना सामने वाला, तो क्यों है ना, क्या करें। लेकिन ये इस सच्ची बात है बिल्कुल, पंडित जी ने लिखने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा ऐसा कि तुम, हम कुछ नहीं, तुम काय में गए थे, हमें ये नहीं सुनना है, है ना, तुम तो शिरडी के साईं बाबा गए तब तो इतना गुस्सा आना ही था, लेकिन वो जो दूसरी क्या बोली थी आपने, वो मांगी तूंगी, वहाँ भी मैं तो, मेरे को तो बर्दाश्त नहीं है, आगे है ना भाड़ा पड़ेगा ना 10 दिन के बाद में, बोला तुम भैया चले ना आगे, कल खत्म हो जाएगा ना, चले जाना जाना ना, तो सारा है, सारे रास्ते खुले हैं ना सारे हिंदुस्तान के, अमेरिका घूम के आना ना, कौन मना करता है, यहाँ तो घर से जा करके आए ना, शिविर में जा रहे हैं, सब तो ज्ञान समझने जा रहे हैं, पहली बार ड्यूटी पूरी करो, यहाँ हमारे धर्म में से क्यों काटते हो, वो कर्म में से काटो ना, कि 3 दिन बाद पहुँचना ना, घर क्या फर्क पड़ता है, घर में कौन सा काम अटक रहा है, 3 दिन बाद पहुँच सकते हैं ना घर पे, तो ऐसा क्यों करते हो, अल्लाह मियाँ बड़े से आने पहले ही काट लिए 2 आने, देखो कहाँ है, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उनसे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। देखो ये कोई साधारण काम का मौका नहीं था जो तुमने चूका है, ये इसमें ये हो सकता था। आप समझे ना, जो तुमने इसमें बर्बाद किया है उसमें ये काम हो सकता था। देखा ना, जीव तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास, लगाए की बात ही नहीं करते, नहीं लगे तो नहीं लगे, लगाने का तुम तो अभ्यास करो। हम तो कहते कोशिश करो, जो कल कहा था ठेके से करो काम, याद करो हमें गाथाएं नहीं सुनने, तुम तो करो खत्म। अभ्यास करे रखे तो विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का अवसर होगा। तुम्हें नहीं करना दर्शन मोह करूंगा, अपने आप होगा। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे ये तत्व निर्णय करने के भाव से तत्व निर्णय तो होगा ही, और दर्शन में मोहिनी का उपशम भी उससे ही होगा, उसका निमित्त होगा, इसका उपादान। कि तुम दो दो कैसे होंगे काम, दो कहां हो रहे, उसका तो हो रहा बन रहा है निमित्त, और अपने परिणामों की का बन रहा उपादान। इसलिए दो काम नहीं हुए, एक एक द्रव्य दो काम एक साथ नहीं कर सकता ना, तो दो काम हुए, एक का उपादान और एक का निमित्त तो हो सकता है। कुमार अपने राग का कर्ता उपादान करता हो सकता है, और घड़े का निमित्त हो सकता है। तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी, तो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। जो ही लगा दिया, कुछ नहीं करने का तुम्हें, और तत्व निर्णय नहीं करना, तत्व निर्णय का अभ्यास। निर्णय तो होगा, निर्णय करने वाला तुम कौन होता है। सात दिनों भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, वो अभ्यास शब्द यहां से लिया है टोटे मिल जी से दौलत रानी ने, बिल्कुल उधार का माल है। सात दिन भर कथित तत्व अभ्यास करो, बस तुम तो अभ्यास करो, कभी निर्णय तो नहीं हो ना, नहीं हो, हो जाएगा, हो जाएगा, आज नहीं कल परसों हो जाएगा, है ना। तो क्या करोगे तुम, तो पाठ करो, तो याद तो हुआ ही नहीं पाठ, तो करें ना बेटा पाठ, हो जाएगा यार, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा, तुम पाठ किए जाओ, तुम तो तत्व निर्णय का अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है ना। इससे ही दर्शन मोह का उपशम स्वयं होता है, जैसे ऊपर था स्वयं फिर स्वयं, है ना, और उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है, कुछ तेई तरफ से देखना ही नहीं है, ये भी मत देखना कि हुआ क्या नहीं हुआ, और देखेगा तो दिखेगा भी नहीं हमारे कुछ तेरे को, उन्हें क्या दिखना है तेरे को कर्म में, काय को माथा बीच बीच में कर्म लाता है। तो देखो, तथा उसके होने पर जीव के स्वयं सम्मय दर्शन होता, तो सम्मय दर्शन भी तेरे को नहीं करना है, सम्मय दर्शन तो करना पड़ेगा, लेकिन तेरे को होगा ही नहीं, वो भी होगा। अरे अपन तो उस देश में पैदा होते हैं कि जहां बच्चा भी पैदा होते हैं किए नहीं जाते हैं, क्यों, आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, कि कोई कहता है कि आपने कितने बच्चे पैदा किए। आज का शायद जमाना ऐसा आ गया कि लोग ऐसा पूछा करेंगे कि तुमने कितने बच्चे पैदा किए, क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक काम होने लग गया ना, करना क्या नहीं करना। पहले जमाने में ऐसा कुछ था ही नहीं, अपन तो पहले जमाने में तो होते थे, क्यों, जैसे माँ बाप होते थे वैसे बाल बच्चे होते थे, जितने हो गए तो हो गए, जितने नहीं भय तो नहीं भय, क्यों, करने बढ़ने का टेंशन फेंशन का काम नहीं है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयं एक सम्मा दर्शन होता है, और सम्मा दर्शन होने पर सिद्धांत तो यह हुआ। अब देखो सम्मा दर्शन होने पर क्या होगा, मैं पांच दिन से आपसे कह रहा था कुछ नहीं होता है, बस जरा ऐसा ऐसा हो जाता है। आपको लग रहा था कि कितनी मट्टी प्लीज कर रहे सम्मा दर्शन की, हमने तो इतना बड़ा बनाया तो सम्मा दर्शन वही इतना सा कर दिया। देखो ये बटोरे मुझे लिख रहे सम्मा दर्शन होने पर क्या होने वाला है, सिंह निकलेंगे माथे से, क्यों। मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि यहाँ बैठे बैठे लोगों में यदि किसी को सम्मा दर्शन हो जाए और कल दर्शन में दर्शन नहीं था, तो उसको आप पहचान सकते हैं, उसकी फोटो के फोटो से पहचान लेंगे, हेलम बन सकती है, पता ऐसा कोई है आपके पास कि जैसे वो सम्मान दर्शन हो गया और बराबर फटाफट कर लो। जब आप कार्टून बनते हैं ना कभी, तब बराबर फिल्म विल्म बना लेते हैं, फोटो वोटो खिंचा लेते हैं, उसकी तो खिंचती है, क्यों सम्मान होने का कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा सम्मान होने का, जो होगा वो सुन लो, देखो इसमें लिखा पंडित जी ने, जब सम्मान होगा तो क्या होगा कि मैं आत्मा हूं, बस एक होगा, बस अंदर में मैं आत्मा हूँ, मैं देहा देखूँ इसमें ही, इनमें मैं हम बुद्धि थी ना, और वो आत्मा में अहम बुद्धि हो जाएगी, बस ये समझ वो कायम राग है, मैं आत्मा हूँ ये कायम रहा, तो समझ कायम है, बस खत्म। मुझे रागाधिक नहीं करना, परंतु चारित्र के मुझे के उदय से रागाधिक होते हैं। अरे वो क्या कहते, समझ होगा तो क्या होगा कि वो मैं आत्मा हूँ और मैं रागाधिक का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा निर्णय तो हो गया, लेकिन उसके रागाधिक अभी भी होते रहेंगे, जो कह रहे वो रागाधिक नहीं मिट जाएंगे। रागाधिक मुझे नहीं करना माने रागाधिक की कर्तृत्व बुद्धि मिट जाएगी, लेकिन रागाधिक होंगे, और तुम्हें पता इसलिए नहीं चलेंगे कि तुम्हें तो रागाधिक दिखते हैं, रागाधिक की कर्तृत्व बुद्धि तो दिखती नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ हुआ ऐसा दिखेगा ही नहीं। समझ में आया ना, वहां क्या टूटा है, रागाधिक की कर्तृत्व बुद्धि टूटी है, वो दिखती नहीं है, और रागाधिक दिखते थे वे तो हो ही रहे। मुझे रागाधिक नहीं करने और रागाधिक होंगे तायत्र मोह के उदय से, वहां तीव्र उदय हो। अब देखो सुनो, जो मैंने कहा था कि चक्रवर्ती लड़ाई भी लड़ेगा, सम्मान हो गया, और तीव्र उदय हो तो विषयाधिक में भी प्रवृत्ति होगी, किसको सम्मादृष्टि को, लिखी कि नहीं लिखी, और मंद उदय हो तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति होगी, वैराग भावना आदि में उपयोग लगाएगा, उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है, फिर अब दर्शन मोह तो खत्म ही हो गया और चारित्र मोह भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग गया। ऐसा होने पर देश चारित्र और सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है, तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्य में परिणति बढ़ाए और विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है, इस प्रकार कर्म से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिक का नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है, पहुंचा दिया उन्होंने मोक्ष में तुम्हें। देखो बोलो, अरे कोई बिल सील संयम उपवाद मुबाद ईरिया समिति बीरिया समिति कुछ नहीं आई, इसमें कोई लेन में संकेत है इनका, और जो तुम्हारे धर्म कार्य हैं ये पूरी जो इनने प्रक्रिया गिनाई इसमें, उसका कहीं भी कोई संकेत दिख रहा है कि इसमें से निकलता है कि वो काम होगा? तो इतनी सी बात है कि वो आत्मा तो उसके ख्याल में आया, उसमें उसका अपनापन आ गया, और उसमें अपनापन गहराता गया और विशुद्धता बढ़ती गई, अशुद्धि हानि हो गई, संख्य गुण ने दिया वही विशुद्धता बढ़ना माने विशुद्धता बढ़ती गई, उसकी हानि होती गई, तो उसमें से अनुवृत्त आ गए, तो और विशुद्धता बढ़ी, वो क्या हो क्या बोलते थे कल बोला था ना, वो उसकी वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि, भाई वही शब्द कर्म झड़ते शब्द का प्रयोग नहीं किया, तुम्हें नजरा नहीं दिख रही बात, वही नजर ही हो रही है, शुद्धि की वृद्धि वृद्धि की हानि, और उसे उसे अनुवृत्त हो गए महानवृत हो गए, शुद्धि की वृद्धि हानि सबक से नहीं चल गया, अरे मोक्ष पाए, ये सब तुम्हारे सब धर्म धरे रहे, ये सारी व्यवहार क्रिया मार्ग और स्वभाव ये कहीं नाम ही नहीं आया, नाम निशान तक नहीं आया, मोक्ष में पहुंचा दिया अभी यही। और कहा क्या करना है इसमें, तुम्हें करने के लिए क्या बताया, तुम मोक्ष तक पहुंच जाओगे उसमें तुम्हारे तुम्हें क्या काम छोड़ा दुलीचंद छोड़े मिल जी ने, इतना सब होगा अब उधर बहुत करने वाले हैं, तुम्हें क्या करना है इसमें, सिर्फ तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का प्रयत्न करना, ये तुम्हारा काम, इसका तो इतना है, इसका हम उपदेश देते हैं और इसका ही उपदेश दिया जाता है, और कोई चीज का उपदेश देने की जरूरत नहीं, इसका नाम देशना लब्धि है, क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका नाम देशना लब्धि नहीं है, कहाँ जाना और क्या नहीं, कहाँ नहीं जाना, इसका नाम देखना लब्धि नहीं है। समझिए ना आपके लिए। देखो इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। तथा जब कर्म का उदय तीव्र, ये तो मंद हुआ था ना, वो अवसर आया था, उस मौके का वर्णन किया और उस मौके पर यदि तुमने जो उद्यम कर लिया तो ये हो जाएगा। अब यदि वो मौका नहीं हुआ, वो तीव्र रहा तो ठीक है देवेंद्र, तो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता। इसको बोलते पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम, जब हो सकता है तब करना, उसका नाम पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। जब नहीं हो सकता तब करना माने वो प्रसाद के बिना का उद्यम। जो हमसे हो सके वो उसमें करना वो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम, और जो ना हो सके प्रदुर में हम कुछ नहीं हो सकता उसमें करना वो बिना पुरुषार्थ का उद्यम। समझ गए। ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है, गर्भ ग्यारह में गुणस्थान से गिर जाता है। मुनि एक आदर्श गुणस्थान गिरत तहाते हैं चित्त भ्रम ढानी और भ्रमत अर्घ पुदगल परिवर्तन किंचित काल ऊन परमाणी। तो वहां भी कारण क्या बताया, किसी कर्म का उदय तीव्र आ गया, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा हो गया, इससे नहीं कुछ नहीं। क्या मुनि एक आदर्श गुणस्थान चढ़ी, ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुंच गए और वहां से गिरे, क्यों गए, किसी ने धक्का मार दिया, कर्म का उदय आ गया, क्या हुआ। चित्त भ्रम ठानी, चित्त में भ्रम पैदा हो गया। मोहन साल में लिखा है ये जीव अनादि काल से निगोद में क्यों है, बोलो क्यों है निगोद में, पहले कर्म के उदय है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम नमुंतंती। सुपौरा भाव कलंक, बहुत घना भाव कलंक है। भाव कलंक माने परमे एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि बहुत घनी है, बस इसके कारण वो निगोद से नहीं। वो जरा थोड़ी पतली पड़ेगी तो निकल आएगी। कैसे पड़ेगी, ऑटोमेटिक होगी, पड़ेगी पड़ेगी, उसमें ऐसा पड़ा है, वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है। तुमको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देखो और वो जो कहते हैं कि जो वो भ्रम चित्त में भ्रम ठानी क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्यों समझ में मिथ्या ऋषि कैसे हो जाता है, चाहे वो चौथे गुण स्थान में होता है ग्यारहवें में होता कैसे है। वो प्रक्रिया का विचार किया कभी वीरेंद्र जी, तो बहुत गड़बड़ी होती होगी, पेट में दर्द होता होगा, दस्त लगते होंगे, सीने में दर्द होता होगा, एंजाइना पेन होता होगा, क्या क्या होता होगा, क्यों ये होता है कि तुम्हारे घर में दुकान में 4 लाख के नोट अभी आए थे, ताजे ताजे रखे थे, आपने अच्छा ताला लगाया तो 3 नजर अच्छी तरह से खींच खींच के देखा कि पूरी तरह से लग गया है कि नहीं, तो जेब में चाबी सुरक्षित रख के ख्याल में आए ना और घर की तरफ चल दिए। 1 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर घर था, दुकान का ताला लगाया था, खुला तो नहीं रह गया, रखा था, मैं इतना सा भ्रम खड़ा हुआ, चल दे, मैं 4 लाख के नोट, और वो जाकर के फिर देखता है ताला लगा तो फिर 3 दिन खींचता है, फिर खुला तो नहीं, नहीं 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 मतलब भ्रम हो गया, नहीं लगा, कोई चिंता करता है, फिर जाता है, फिर आधा किलोमीटर चला, लगाया था कि नहीं, इसका नाम है चित्त भ्रम ठानी। समझ में आ गया नहीं आया। ऐसा होता है कि अंदर प्रकाशित और भगवान आत्मा के दर्शन होंगे, यही मैं हूँ, इसमें एकत्व बुद्धि हुई, अतीन्द्रिय आनंद का रसना झलने लग गया, ये सचमुच हुआ है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, क्या ये सचमुच हुआ है कि स्वप्न देख रहा हूँ, खत्म, क्या क्या चित्त में भ्रम हो गया खड़ा, इस सचमुच मुझे त्रिकालीतर भगवान आत्मा के दर्शन हुए हैं कि मैंने सपना देखा था, अब सुबह कहता है कि डॉक्टर साहब रात को मेरे को ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर को भगवान आत्मा के दर्शन हो गए, ऐसे हो गए ऐसे हो गए, और बाद में आँख खुल गई। अब मुझे पता नहीं सपना था कि सचमुच हुए थे। अब आप बताओ, अब तुमने तो बेटा देखा है, तुम्हें पता नहीं है, हम क्या बताएं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, मतलब चित्त भिन्न, चित्त में बिल्कुल पक्का निर्णय होते ने के बीच में कभी भी किसी भी प्रसंग में ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। देखो आप 2 लाख के नोट अपने जेब में रख करके ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, तो 2-2 घंटे बाद ऐसा ऐसा छू के देख लेते हैं कि नहीं देख लेते? क्यों देख लेते हैं? क्यों देखते हैं? जो द्वारा जो वहाँ हाथ जाता है तो संशय पैदा हो गया कि है कि नहीं, वो ज्ञान में समारूप हो गया, संशय में दिवस आए कि हैं कि नहीं, अभी तक हैं कि नहीं, अभी तक हैं, फस में दर्शन हो गया, फिर आगे बढ़ रही गाड़ी, फिर 1 घंटे बाद है क्यों? तो फिर अब साफ हो गया मामला, जेब कट गया, दे दे हो जाता है जेब कट जाती, ऐसा चित्त में 11वें गुणस्थान में हो जाता है। तो डमली वाले ये उदाहरण क्यों दे रहे, ये कह रहे भैया समदर्शन होने की विधि वही है, और तुम बार बार कर्म के उदय की बात करते हो, तो क्या करना उसकी बात, वैसा भी हो जाता है, 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं, तो इस डर के मारे के हम अंदर चढ़ेंगे ही नहीं, समदर्शन पैदा नहीं करेंगे क्या, क्या ख्याल में आए ना? और 11वें गुणस्थान से तो गिरते ही हैं, 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं नहीं, वो तो गिरने का ही गुणस्थान है, वो तो गिरने के ही चल लिए चढ़े थे, वो तो वहां से उनको अस्थिरता आनी आनी है, भले चित्त में भ्रम पैदा ना हो तो पहले में नहीं आए, लेकिन अस्थिरता तो आनी है, छत में तक तो आना ही आना है, वो कोई उपाय नहीं है, उसके गुणस्थानों से भी गिर जाता है, वहां तो जैसी होनहार होता है जैसा होता है। अब वहां तुम वो होनहार वाला पुंड था, काल लब्धि आयो होनहार पर होना होता है सम्मत दर्शन के नहीं, तो यहाँ होनहार याद किया, वहां इस कहना के भी होनहार ही ऐसी थी, होनहार को वहां याद करना, ये पुरुषार्थ करने के मौके पर होनहार को याद नहीं करना अपशगुन है। अपशगुन समझते कि नहीं? लड़का लड़की के फेरे पड़ रहे थे, 5 फेरे हुए, एक आदमी खड़ा होगा, पंडित जी मेरा एक प्रश्न है, फेरे बंद करो, मेरा पहले जवाब दो। अरे भैया मंदिर में पूछना है, शादी हो रही है? नहीं नहीं, अच्छा बोल बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। ये जो लड़का लड़की की शादी हो रही है तो ये एक साथ तो मरेंगे नहीं, तो ये लड़का रडुआ होगा, ये लड़की रांड होगी, ये बताओ। मनुष्य गति में एक साथ तो मरने का प्रसंग बहुत कम होता है, तो बताओ कि ये लड़का विधुर होगा कि लड़की विधवा होगी? अब बेटा बोला से बोला, अब मत बोलना नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी। ये मंगल अवसर है, इस वक्त ऐसी बात नहीं कि इसमें खराबी क्या है, इसमें सच्चा है, दोनों एक साथ मरने वाले हो मनुष्य गति में तो वो भी बता दो, हम वो मानने को तैयार है। ये तो नक्की है, केवल के ज्ञानी के हाथ में रखे देखे आंवले के समान, कि एक या तो ये विधवा होगी या विधुर होगा। लेकिन ये बात 100% सच्ची है, नक्की है, लेकिन अभी नहीं पूछी जाती, क्यों साहब? वो हमने वो ऐसा सब किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा ऐसे किया, ये सब किया, ऐसा किया, वो संबंध ऐसा हुआ हुआ, और ऐसे में यदि हमारे वहां से गिर गए हम तो होनहार का विचार कर लेंगे और क्या करेंगे। ये होनहार को तब याद करना जब गिर जाओ, लेकिन चढ़ते ही वक्त मत करना कि ठीक है हम चढ़ तो रहे और कहीं गिर गए तो, क्या कहीं गिर गए तो, ये विचार पहले करने का नहीं है, गिर जाओ तब करने का है कि होनहार से गिरी, चढ़ते वक्त विचार नहीं करने का गिर गए तो, गिर गए तो जब विचार करेगा तो चढ़ ही नहीं पाएगा, ये अमंगल है, ये अपशगुन है। उस वक्त होनहार को याद करना, कर्म को याद करना, काल लब्धि को याद करना, अभी तो पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़, ख्याल में है ना? परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना, ये बात है। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता। खूब जोर का पानी आ रहा हो, बह रहा हो, हाथ पैर मारेगा, थक और जाएगा, क्या है ना। उपदेश भी कार्य उसे समझाना कि भूत निकल जा, निकल जा, हाथ पैर मार, तो बेकार है। और पानी का जोर थोड़ा हो तो यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। उसी को निकलने की शिक्षा भी देते, भी निकल जा, मौका है, मौका है, पास में जल्दी निकल जा। और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। अब वो जब वो पानी का जोर कम आएगा जहां, वहां से तुम धीरे मंदी गति से बहेगा और किनारा पास में दिखाई दे तो वो मौका है, वो अवसर है पुरुषार्थ करने का, वो जो आपको मिला हुआ है। उस वक्त हाथ मारे तो किनारे लग जाएगा और वो मौका चूका तो थोड़ी देर बाद ही फिर तीव्र धार आने वाली है पानी की, समझे ना। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है और वहां तीव्र कर्मों का उदय हो तब तो पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे, किंचित विशुद्धता पाकर तो थोड़े काल में मंद कसार में रहेगा, तो तीव्र उदय आने पर निबोध आदि पर्याय को प्राप्त करेगा। तो एक मिनट पहले शुद्ध में पहुंचा दिया और एक मिनट बाद निबोध में पहुंचा दिया। अब इसमें स्वर्ग नरक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो पुण्य पाप के फल हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे, ये तो धर्म अधर्म की बात कर रहे। अधर्म करेगा तो निबोध में जाएगा, धर्म करेगा तो मोक्ष में जाएगा। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। हाँ ठीक है, आपने अच्छा बता दिया कि जब मौका आए तब चूकना नहीं चाहिए। अब की बार जब मेरा मौका आएगा तब मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। कि मूर्ख आएगा नहीं, आया है तब कह रहा हूं मैं, देखो लगा ना। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना फिर कठिन है। कब कब, अब कब अमर भाई? अरे अभी इसी समय फिर प्राप्त करना कठिन है। फिर कब? परसों, दो महीने बाद? अरे अभी दो मिनट बाद, दो मिनट बाद मेरा बोलना बंद होगा और यहां बजाय शुरू हो जाएगा, कोलाहल शुरू हो जाएगा। सदन अवसर गया, क्यों? शरीर उठ खड़ा होगा, जैसे गेंद होती है ना, दरीरे की एकदम पटक उठती है, मन उठ बैठेगा, वाणी से बोल फूट पड़ेगी। मन वचन का तीनों न मालूम कैसे बंधे हैं अभी तो, है ना। ये अवसर आना कठिन है, ये चूका तो गया, कोई कोई कल परसों की बात नहीं है। देखो ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है, उठी हाथ आठवें दिन लगती है। क्यों? ये सवा अभी उठी तो फिर कब लगेगी इसका कोई नक्की नहीं है। जो प्रवीण ने तो घोषणा कर दी है, कर दी होगी, उठी आज तो आठवें दिन लगती है, इसका आठवें दिन का भी भरोसा नहीं है। और हाथ लग भी गई, उसमें हम और तुम नहीं हुए तो क्या लगी हमारे लिए, बोलो। हाथ द्वारा लगी, उसके पहले हम उठ गए तो क्यों मालूम जी। अभी हाथ उठी और तुम चले गए तो, तुम नहीं गए तो हम चले गए तो हाथ अपनी का हाथ, अपने हाथ तो लगने वाली नहीं है। देखो इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना, अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये बस ये धर्म कार्य ये करना है, ये अंतिम निष्कर्ष है। ये समझ, पूरे शिविर का समझ लो, सब व्याख्यानों का समझ लो, इस प्रकरण का समझ लो, सूत्र तात्पर्य समझ लो, शास्त्र तात्पर्य समझ लो, क्या कि उपदेश सिर्फ तत्व निर्णय करने का दिया जाता है और मुक्ति के मार्ग में पुरुषार्थ भी सिर्फ तत्व निर्णय करने के उपयोग लगाने का ही करना है धर्म के नाम पर, और कुछ भी करो वो, और जो कुछ भी होगा लेकिन वो धर्म नहीं।